एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरेंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया की एक तरह से नींव है पर अक्सर नजर नहीं आती।
हाँ बिल्कुल, ये चीज है मेटा डेटा।
मेटा डेटा सुनने में थोड़ा सा शायद टेक्निकल लगे ना?
लगता तो है, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी का, आप कह सकती हैं, अदृश्य हिस्सा है। गूगल सर्च से लेकर हमारे फोन में जो तस्वीरें हैं या फिर नेटफ्लिक्स जो हमें फिल्में सजेस्ट करता है,
अच्छा,
सबके पीछे कहीं ना कहीं मेटा डेटा ही काम कर रहा है। और इसे ठीक से समझने के लिए हम आज जेफरी पोमरांस की किताब मेटा डेटा पर बात करेंगे। ये MIT प्रेस एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
और देखिए, आज के समय में ये समझना जरूरी भी है, हम सब जैसे सूचना के एक महासागर में है ना?
बिल्कुल।
तो सवाल ये है कि ये जानकारी हम तक पहुंचती कैसे है, हम चीजें ढूंढते कैसे हैं, ये ऑनलाइन दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे है?
सही बात है, और इन सब सवालों के जवाब वो मेटा डेटा की समझ में ही छिपे हैं। ये किताब उसी अदृश्य आर्किटेक्चर पर, उसी ढांचे पर रोशनी डालती है।
तो ये सिर्फ डेटा के बारे में डेटा वाली बात नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये वो चाबी है जिससे हम सूचना के दरवाजे खोलते हैं, उसे समझते हैं। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया की परतों को थोड़ा खोलकर देखते हैं।
तो शुरू करते हैं लेखक से, जेफरी पोमरांस। कौन है ये?
जेफरी पोमरांस सिमन्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उनकी PhD सूचना विज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन साइंस में है।
लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, तो मतलब इनका नाता लाइब्रेरियों से भी है।
हाँ, और यही बात दिलचस्प है। उनका काम जो है वो लाइब्रेरी साइंस के सदियों पुराने ज्ञान और आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बीच एक पुल जैसा बनाता है।
अच्छा, कैसे?
सोचिए ना, कंप्यूटर के आने से बहुत पहले लाइब्रेरियन किताबों को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे।
वो कार्ड कैटलॉग होते थे शायद, छोटे छोटे कार्ड्स दराजों में।
बिल्कुल वही कार्ड कैटलॉग। अब वो कार्ड खुद तो किताब नहीं था ना?
नहीं, वो तो बस जानकारी थी किताब के बारे में।
सही कहा, वो किताब के बारे में संरचित जानकारी थी कि किताब का नाम क्या है, लेखक कौन है, किस विषय पर है, लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगी।
हाँ, याद आया।
तो वो भी तो मेटा डेटा ही था, एक पुराना रूप। पोमरांस इसी ऐतिहासिक समझ को आज के डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं।
लेकिन उनकी किताब सिर्फ तकनीकी नहीं है, आपने कहा।
नहीं बिल्कुल नहीं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण नज़रिया ये है कि जब हम किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं, चाहे वो किताब हो, कोई इंसान हो या कोई घटना, तो ये काम कभी भी पूरी तरह से तटस्थ, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता।
आप कह रही हैं कि जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमारी अपनी सोच शामिल हो जाती है?
हाँ, हमारी मूल्य, हमारी मान्यताएं, यहाँ तक कि हमारे पूर्वाग्रह भी उसमें झलकते हैं। हम क्या जानकारी देना चुनते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है।
ये तो सोचने वाली बात है।
और यही नज़रिया उनकी किताब को खास बनाता है। वो तकनीकी बारीकियां तो समझाते हैं, पर साथ ही इसके मानवीय और सामाजिक पहलू पर भी जोर देते हैं।
तो ये किताब फिर असल में है किस बारे में? क्या ये सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए?
नहीं, ऐसा नहीं है। ये किताब मेटा डेटा का एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही व्यापक परिचय है। ये हर उस इंसान के लिए है जो यह समझना चाहता है कि हमारी डिजिटल दुनिया अंदर से काम कैसे करती है।
जैसे स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स।
हाँ, या कोई भी जिसे बस जानने की इच्छा हो।
ठीक है, तो किताब शुरू कैसे होती है?
किताब की शुरुआत ही मेटाडेटा की एक ज्यादा मजबूत परिभाषा से होती है। आमतौर पर हम क्या सुनते हैं, डेटा के बारे में डेटा।
हाँ, यही सबसे कॉमन परिभाषा है।
पर पोमरांस कहते हैं कि ये काफी नहीं है। वो कहते हैं मेटाडेटा एक संरचित कथन है
स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट
जो किसी रिसोर्स यानी किसी चीज के बारे में कुछ दावा करता है।
संरचित कथन, ये थोड़ा समझाएंगे।
जैसे सोचिए, आप कोई फॉर्म भरते हैं, नाम, खाली जगह, पता, खाली जगह, यह एक स्ट्रक्चर है।
हाँ,
मेटाडेटा भी इसी तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे मान लीजिए एक मेटाडेटा स्टेटमेंट है, इस किताब के लेखक है जेफरी पोमरांस। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक पूरा वाक्य है जो एक खास संरचना में एक नियम के तहत जानकारी दे रहा है।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ टैग या लेबल चिपकाना नहीं है, ये जानकारी देने का एक व्यवस्थित नियमबद्ध तरीका है।
बिल्कुल, और किताब बताती है कि इस मेटाडेटा के मुख्य काम क्या हैं, मतलब ये करता क्या है।
हाँ, ये जानना जरूरी है।
मोटे तौर पर तीन मुख्य काम बताए गए हैं। पहला है संसाधन खोज, रिसोर्स डिस्कवरी।
यानी चीजों को ढूंढने में मदद करना, जैसे गूगल सर्च।
एकदम सही। अरबों खरबों वेब पेजों में से सही जानकारी ढूंढना मेटाडेटा के बिना तो लगभग नामुमकिन होता।
ठीक है, पहला काम हुआ खोजना, दूसरा?
दूसरा है सूचना संगठन, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। चीजों को लॉजिकली व्यवस्थित करना, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटना।
जैसे लाइब्रेरी में विषय के हिसाब से किताबें रखी होती हैं, या कंप्यूटर में हम फोल्डर बनाते हैं।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और तीसरा काम?
तीसरा है अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी।
ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग सकता है।
हाँ लग रहा है,
लेकिन इसका मतलब आसान है। इसका मतलब है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स को एक दूसरे की जानकारी समझने और इस्तेमाल करने लायक बनाना।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे सोचिए, दुनिया भर में बिजली के प्लग और सॉकेट के स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, ताकि आपका लैपटॉप या फोन चार्जर कहीं भी काम कर सके।
हाँ होते हैं। वैसे ही डेटा के लिए भी मानक या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग ऐप, अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान कर सकें, एक दूसरे की भाषा समझ सकें।
अच्छा, तो ये तीन मुख्य काम हैं, खोजना, व्यवस्थित करना और सिस्टम्स को आपस में बात करने लायक बनाना।
बिल्कुल। किताब इन्हीं तीन कामों को आधार बनाकर आगे मेटाडेटा की दुनिया को एक्सप्लोर करती है।
आपने कहा था कि सारा मेटाडेटा एक जैसा नहीं होता, किताब इसके प्रकारों के बारे में भी बताती है।
हाँ बिल्कुल। अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग तरह का मेटाडेटा होता है। इसे समझने के लिए एक डिजिटल फोटो का उदाहरण लेते हैं।
ठीक है, एक फोटो, उसमें क्या क्या मेटाडेटा हो सकता है?
कई तरह का। सबसे पहले है वर्णनात्मक मेटाडेटा, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। ये बताता है कि फोटो क्या है।
जैसे?
जैसे फोटो का टाइटल, उसका कैप्शन, उसमें कौन लोग हैं, अगर टैग किया गया है, कीवर्ड्स जैसे बर्थडे पार्टी, दिल्ली, दोस्त। ये जानकारी फोटो को पहचानने और बाद में ढूंढने में मदद करती है।
समझ गया, ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव। और
दूसरा है संरचनात्मक मेटाडेटा, स्ट्रक्चरल मेटाडेटा। ये बताता है कि चीजें कैसे व्यवस्थित हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है।
फोटो के मामले में ये कैसे होगा?
जैसे मान लीजिए एक ऑनलाइन फोटो एल्बम है, तो उसमें तस्वीरों का क्रम क्या है, कौन सी तस्वीर कवर फोटो है, या अगर कोई किताब है तो उसमें चैप्टर्स का क्रम क्या है, पेज नंबर कैसे जुड़े हैं। ये नेविगेशन में मदद करता है।
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, तीसरा?
तीसरा है प्रशासनिक मेटाडेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। ये उस चीज के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए होता है।
मैनेजमेंट मतलब?
इसके भी कई हिस्से हो सकते हैं, जैसे तकनीकी मेटाडेटा, फोटो किस कैमरे से ली गई, उसकी सेटिंग्स क्या थीं, फाइल का साइज क्या है, फॉर्मेट जेपेग पीएनजी क्या है।
अच्छा, ये सब भी स्टोर होता है?
हाँ। फिर होता है संरक्षण मेटाडेटा, प्रेजर्वेशन मेटाडेटा, मतलब इस फाइल को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी जानकारी। और बहुत जरूरी, अधिकार मेटाडेटा, राइट्स मेटाडेटा, यानी इस फोटो का कॉपीराइट किसके पास है, इसे इस्तेमाल करने की इजाजत है या नहीं।
अरे वाह, मतलब एक आम सी दिखने वाली डिजिटल फोटो के पीछे इतनी सारी अलग अलग तरह की जानकारी छिपी होती है।
बिल्कुल। और ये सब मिलकर ही उस फोटो को हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। किताब ये भी याद दिलाती है कि ये कोई आज की इजाद नहीं है। पुराने जमाने की लाइब्रेरियों से लेकर आज के नेटफ्लिक्स एल्गोरिदम तक, ये सब जानकारी को व्यवस्थित करने की जो हमारी माननीय जरूरत है, उसी का विकसित रूप है।
आपने पहले मानकों यानी स्टैंडर्ड्स की बात की थी, कि अलग अलग सिस्टम्स को आपस में बात करने के लिए नियमों की जरूरत होती है। किताब इस पर और बताती है?
हाँ, ये एक बहुत अहम हिस्सा है। सोचिए, अगर हर वेबसाइट, हर ऐप अपने मनमाने तरीके से मेटाडेटा बनाए, तो गूगल जैसा सर्च इंजन उन्हें समझेगा कैसे, या एक लाइब्रेरी का सिस्टम दूसरी लाइब्रेरी के सिस्टम से डेटा कैसे लेगा।
बात तो सही है, कोई कॉमन भाषा होनी चाहिए।
बिल्कुल, इसीलिए साझा नियमों यानी मानकों की जरूरत पड़ती है। जैसे सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं, वैसे ही डेटा के आदान प्रदान के लिए मानक होते हैं।
कुछ मशहूर मानकों के नाम हैं इसमें?
हाँ, किताब कुछ प्रमुख मानकों का जिक्र करती है, जैसे मार्क। ये लाइब्रेरियों में दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, काफी पुराना और बहुत विस्तृत है।
अच्छा।
फिर है डबलिन कोर, ये खास तौर पर वेब के लिए बनाया गया था। ये मार्क के मुकाबले काफी सरल और लचीला है, वेबसाइट वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है।
और
फिर कुछ खास फील्ड्स, मतलब डोमेन स्पेसिफिक मानक भी होते हैं, जैसे XIF, जो डिजिटल कैमरों से निकली तस्वीरों में कैमरा सेटिंग्स, जीपीएस लोकेशन वगैरह की जानकारी स्टोर करता है, या ओनिक्स जो किताबों के पब्लिशिंग उद्योग में इस्तेमाल होता है किताब की कीमत, आईएसबीएन, प्रकाशक वगैरह की जानकारी के लिए।
तो ये मानक, ये स्टैंडर्ड्स एक तरह से डेटा की दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका, मतलब आम भाषा बन जाते हैं।
सटीक पहा, यही वो नियम है जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को मुमकिन बनाते हैं। ये सिर्फ तकनीकी चीज नहीं है, ये एक तरह के सामाजिक और तकनीकी समझौते हैं।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है, वेब और सोशल मीडिया पर मेटाडेटा।
हाँ हाँ बिल्कुल, किताब बताती है कि पूरा वर्ल्ड वाइड वेब अपने आप में मेटाडेटा से ऑर्गेनाइज्ड एक बहुत बड़ा डेटाबेस जैसा है।
अच्छा, कैसे?
जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम गूगल के बनाए हुए एक विशाल मेटाडेटा इंडेक्स को खंगाल रहे होते हैं। वेबसाइट बनाने वाले लोग अपनी साइट्स में HTML टैग्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे टाइटल टैग या मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन टैग।
हाँ सुना है, SEO में ये जरूरी होते हैं।
बिल्कुल, ये भी मेटाडेटा ही है। ये सर्च इंजन को बताते हैं कि ये वेब पेज किस बारे में है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO का ये एक बुनियादी हिस्सा है।
और फिर इसमें सिमेंटिक वेब और लिंक्ड डेटा जैसी चीजों का भी जिक्र है, ये क्या बला है? सुनने में भारी लगता है।
है तो थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, पर कोशिश करती हूँ आसान बनाने की। देखिए, अभी का वेब ज्यादातर क्या करता है, वो वेब पेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करता है।
हाँ,
सिमेंटिक वेब और लिंक्ड डेटा का आइडिया है कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को न जोड़ें बल्कि डेटा को आपस में जोड़ें और उनके बीच के संबंधों को भी साफ साफ बताएं।
मतलब
सिर्फ ये ना बताएं कि जयपुर एक शहर है, बल्कि ये भी बताएं कि जयपुर शहर है जो स्थित है राजस्थान राज्य में, जो हिस्सा है भारत देश का। और ये जानकारी इस तरह से हो कि मशीनें यानी कंप्यूटर भी इसे समझ सकें।
अच्छा, चीजों और उनके रिश्तों का एक जाल बनाना जिसे मशीनें समझ सकें। जैसे गूगल सर्च के साइड में कभी कभी एक बॉक्स में जानकारी आ जाती है किसी व्यक्ति या जगह के बारे में।
हाँ, गूगल का नॉलेज ग्राफ इसी लिंक्ड डेटा के सिद्धांतों पर बना है। ये वेब को सिर्फ हाइपरलिंक्स के जाल से आगे ले जाकर ज्ञान के एक जुड़े हुए नेटवर्क में बदलने की कोशिश है।
किताब एक और बड़े बदलाव की बात करती है ना, कि अब मेटाडेटा सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं बना रहे, लाइब्रेरियंस या आर्काइविस्ट टाइप के लोग।
हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, अब हम सब आम यूजर्स मेटाडेटा बना रहे हैं। इसे कहते हैं उपयोगकर्ता जनित मेटाडेटा, यूजर जेनरेटेड मेटाडेटा।
इसके उदाहरण तो रोज ही देखते होंगे हम।
बिल्कुल, सबसे आम उदाहरण है सोशल मीडिया पर हैशटैग लगाना, हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग फूड, हैशटैग इंडिया। हम खुद अपनी पोस्ट को कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये नीचे से ऊपर बनने वाली व्यवस्था है जिसे फॉक्सोनमी भी कहते हैं।
और जियो टैगिंग, जब हम अपनी फोटो या पोस्ट के साथ लोकेशन जोड़ते हैं।
हाँ वो भी, ये जानकारी को एक बहुत जरूरी संदर्भ देता है कि ये चीज कहाँ से जुड़ी है, लेकिन साथ ही इससे निजता यानी प्राइवेसी की चिंताएं भी खड़ी होती हैं।
बात तो है।
और सोचिए, हम जो ऑनलाइन चीजों को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट्स को रेटिंग देते हैं, फिल्मों का रिव्यू लिखते हैं, अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, ये सब क्या है?
ये सब भी मेटाडेटा ही है।
हाँ, ये सब डेटा है जो हमारे बारे में है, हमारी पसंद नापसंद के बारे में। हम सब अनजाने में ही सही लगातार मेटाडेटा बना रहे हैं। वी आर ऑल मेटाडेटा क्रिएटर्स नाउ।
लेकिन किताब इसके एक स्याह पहलू, एक डार्क साइड की तरफ भी इशारा करती है, निगरानी, सर्वेलेंस।
हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। किताब में एडवर्ड स्नोडन के खुलासों का जिक्र आता है।
हाँ, NSA वाला मामला।
बिल्कुल, कैसे अमेरिकी एजेंसी NSA ने लाखों लोगों की फोन कॉल्स की बातचीत सुने बिना सिर्फ उनके मेटाडेटा का विश्लेषण करके, मतलब किसने किसको कब कितनी देर कॉल किया, कहां से किया, उनके पूरे सोशल नेटवर्क का नक्शा तैयार कर लिया था।
बाप रे, मतलब बिना कंटेंट जाने सिर्फ मेटाडेटा से इतना कुछ पता चल सकता है।
हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ मेटाडेटा जैसी कोई चीज नहीं होती। मेटाडेटा अपने आप में बहुत शक्तिशाली जानकारी हो सकती है और ये हानि रहित नहीं है।
और भविष्य के बारे में क्या? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या रोल होने वाला है मेटाडेटा में?
किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर फोकस करता है। AI अब मेटाडेटा बनाने के काम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कैसे?
जैसे फेसबुक या गूगल फोटोज का तस्वीरों में चेहरों को अपने आप पहचानना और टैग कर देना, या किसी न्यूज आर्टिकल को पढ़कर उसका विषय अपने आप बता देना, या यूट्यूब का वीडियो देखकर उसके लिए टैग सुझाना। AI ये काम अब खुद ब खुद कर सकता है।
इसे तो काम आसान होता होगा, एफिशिएंसी बढ़ती होगी।
बिल्कुल, दक्षता बढ़ती है, समय बचता है। लेकिन
लेकिन
इसमें कुछ खतरा भी है।
हाँ, खतरा है।
एक बहुत बड़ा खतरा है पूर्वाग्रह का, बायस का।
पूर्वाग्रह एआई में कैसे?
देखिए, एआई सिस्टम सीखते कैसे हैं? वो उस डेटा से सीखते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है ना?
हाँ,
अब अगर उस ट्रेनिंग डेटा में ही समाज में मौजूद पूर्वाग्रह शामिल है, जैसे नस्ल, लिंग, जाति या संस्कृति को लेकर जो हमारे समाज में भेदभाव या स्टीरियोटाइप है, तो एआई भी उन्हीं पूर्वाग्रहों को सीख लेगा, और फिर जब वो मेटाडेटा बनाएगा तो वो मेटाडेटा भी पक्षपाती हो सकता है। और क्योंकि एआई ये काम बहुत बड़े पैमाने पर करता है, तो ये पूर्वाग्रह और ज्यादा फैल सकते हैं।
ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब एआई से बना मेटाडेटा भी तटस्थ, न्यूट्रल नहीं होगा।
बहुत मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। किताब का निष्कर्ष यही है कि मेटाडेटा एक लगातार बदलने वाला और अक्सर विवादों से घिरा क्षेत्र है। यहाँ जो तकनीकी फैसले लिए जाते हैं उनके सीधे मानवीय नतीजे होते हैं।
तो रास्ता क्या है?
रास्ता है संतुलन बनाने का। भविष्य में हमें ऑटोमेशन यानी स्वचालन और मानवीय समझदारी, मानवीय निरीक्षण के बीच एक सही बैलेंस बनाना होगा, ताकि हमारे सिस्टम कुशल तो हों पर साथ ही निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी भी हों।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
मेरे लिए सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि मेटाडेटा हमारी आधुनिक डिजिटल जिंदगी का अदृश्य ढांचा है, द इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हर जगह है, हमारे हर डिजिटल काम के पीछे, भले ही हम इसे नोटिस न करें।
दूसरी बात शायद ये कि ये अव्यवस्था में व्यवस्था लाने का तरीका है ना? इतनी सारी जानकारी के अंबार में कुछ खोजने लायक, समझने लायक बनाने का हमारा तरीका।
बिल्कुल।
तीसरा, मानकीकरण की ताकत। साझा नियमों के बिना ये ग्लोबल नेटवर्क चल ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड्स ही इसे संभव बनाते हैं।
चौथा, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, कि अब हम सब मेटाडेटा निर्माता हैं। पहले ये काम कुछ एक्सपर्ट्स करते थे, अब हमारे हर लाइक, हर टैग, हर क्लिक से मेटाडेटा बन रहा है। एक तरह से सूचना का लोकतंत्रीकरण हुआ है।
हाँ, पर इसके अपने खतरे भी हैं जैसा हमने देखा। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, मेटाडेटा कभी तटस्थ नहीं होता, नेवर न्यूट्रल। किसी चीज का वर्णन कैसे किया जाए, ये चुनाव हमेशा हमारी सोच, हमारे मूल्यों, हमारे पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है।
और जब ये पक्षपाती वर्णन एल्गोरिदम में फीड होता है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कौन सी जानकारी ऊपर आएगी, कौन सी दब जाएगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा छठा मुद्दा है निगरानी की दोधारी तलवार का। जो मेटाडेटा हमें सुविधा देता है, पर्सनलाइजेशन देता है, वही हमारी निगरानी का एक अभूतपूर्व साधन भी बन सकता है। हमारे डिजिटल पदचिन्ह हमारी कहानी कहते हैं, जिसे सरकारें और कंपनियां पढ़ सकती हैं।
किताब में कुछ विचार वाकई ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे वो पहला वाला कि मेटाडेटा सिर्फ डेटा के बारे में डेटा नहीं, बल्कि एक संरचित कथन है, एक दावा है।
हाँ, ये उसे एक पैसिव लेबल से उठाकर एक एक्टिव ग्रामेटिकल एक्शन बना देता है। इससे पता चलता है कि मेटाडेटा सिस्टम कितने असरदार हो सकते हैं।
एक और अहम बात कि सूचना का इतिहास असल में मेटाडेटा मानकों का इतिहास है। साझा नियमों के बिना डिजिटल दुनिया बस एक शोर होती, जहां जानकारी तो होती पर कोई उसे समझ ना पाता, बैबल का टावर जैसा।
ये इंटरऑपरेबिलिटी के महत्व को दिखाता है, और ये भी कि मानक बनाना सिर्फ तकनीकी काम नहीं, ये एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कौन से नियम बनेंगे, कौन तय करेगा, ये सब अहम सवाल हैं।
ये विचार भी बड़ा दमदार है कि हम सब अब मेटाडेटा निर्माता हैं। हर हैशटैग, हर जियो टैग, हर लाइक उस ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लगातार बना और बदल रहा है।
हाँ, ये एक तरह से सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, लेकिन साथ ही यह हमें उन डेटा ट्रेल्स के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं और जिनका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म्स अपने फायदे के लिए कर सकते हैं।
और अंत में वो सबसे जरूरी बात कि कोई भी मेटाडेटा तटस्थ नहीं होता। वर्णन करने का तरीका हमेशा एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन है, और हर व्याख्या में पूर्वाग्रह की गुंजाइश होती है।
बिल्कुल। और जब ये पूर्वाग्रह एल्गोरिदम्स में कोड कर दिए जाते हैं तो वो तय कर सकते हैं कि किसे क्या जानकारी दिखेगी, किसे मौके मिलेंगे, किसे नहीं। ये एक सामाजिक न्याय का मुद्दा भी बन जाता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकालें, हम इस ज्ञान का क्या करें?
पहला तो शायद व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधन में। हम खुद अपने डिजिटल सामान को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
जैसे
अपने डिजिटल तस्वीरों को ठीक से कीवर्ड्स, तारीख, जगह के साथ टैग करना, अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को सही से ऑर्गेनाइज करना ताकि गाने आसानी से मिलें, मतलब अपने डिजिटल कबाड़ को एक काम के खोजने लायक डेटाबेस में बदलना।
और कामकाज की दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ में,
कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए ये एसईओ को गहराई से समझने जैसा है, क्यों सही मेटा डाटा डालने से उनका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचता है। डेवलपर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स के लिए ये बेहतर इंटरऑपरेबल सिस्टम बनाने के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है।
लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा आम इंसान के लिए।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये हमारी डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ा सकता है।
कैसे?
ये समझने में कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब हमें कोई खास वीडियो या फिल्म क्यों सुझा रहे हैं, ये उनके एल्गोरिदम की वजह से है जो हमारे देखे गए कंटेंट के मेटा डाटा का विश्लेषण करते हैं।
अच्छा।
ये सोचने में कि हमारे सोशल मीडिया फीड में जो खबरें या पोस्ट आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, क्या वो वाकई सबसे जरूरी हैं या किसी एल्गोरिदम या मेटा डाटा के पूर्वाग्रह का नतीजा है।
और अपने खुद के बनाए मेटा डाटा के बारे में ज्यादा जागरूक होना।
हाँ, अपनी तस्वीरों में लोकेशन डाटा ऑन रखना है या ऑफ, ऐप्स को कितनी परमिशन देनी है, हमारे कॉल लॉग्स क्या बता रहे हैं, सर्च रिजल्ट्स पर सवाल उठाना, क्या ये निष्पक्ष है?
बिल्कुल, ये हमें तकनीक से जुड़ी बड़ी बहसों जैसे एल्गोरिथम बायस, डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज वगैरह को बेहतर ढंग से समझ लें और उनमें सोच समझकर हिस्सा लेने लायक बनाता है।
तो इस सब चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? व्हाट वॉज योर मेन टेक अवे?
मेरे लिए शायद ये कि वर्णन करना, नाम देना, क्लासिफाई करना, ये जो काम हमें बड़े साधारण लगते हैं, ये असल में 21वीं सदी को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक हैं। और इस अदृश्य संरचना को समझना आज बहुत जरूरी है।
और मेरे लिए ये कि मेटा डेटा जो इतना तकनीकी और मशीनी लगता है, वो असल में बहुत ज्यादा मानवीय है, ह्यूमन एट इट्स कोर। ये कभी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव या तटस्थ नहीं होता, बल्कि हमारी पसंद, हमारे मूल्य, हमारी कमियों, हमारे पूर्वाग्रहों का आईना होता है। और जब तकनीक इसे बड़े पैमाने पर लागू करती है, तो इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं।
जेफरी पोमेरेंट्स की ये किताब हमें हमारी डिजिटल दुनिया के व्याकरण की, उसके ग्रामर की एक बहुत जरूरी और आसानी से समझ आने वाली शिक्षा देती है। यह हमें उस माहौल को समझने का नजरिया देती है जहाँ सूचना को व्यवस्थित करने वाले सिस्टम खुद सूचना जितने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।